राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आज। आप सुन रहे मोबाइल वाणी, मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुकर। साथियों, आज हमारे साथ जनपद पंचायत सिवनी से सेवानिवृत्त एवं ईटीसी के पूर्व प्रशिक्षक तथा वरिष्ठ पंचायती राज मास्टर ट्रेनर सीके चौबे सर आज मोबाइल वाणी पर रूबरू होने जा रहे हैं। नमस्कार सर जी।
नमस्कार पातुरकर जी।
सर जी, आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। इस अवसर पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोकतंत्र में त्रिस्तरीय पंचायती राज का क्या महत्व है।
आपका धन्यवाद। जो आज आपने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस में आपने मुझे आमंत्रित किया। पंचायती राज कैसे स्टार्ट हुआ, लागू कब हुआ और इसकी व्यवस्था क्या है, इसके संबंध में मैं बताता हूँ। भारत का 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। 24 अप्रैल 1993 में लागू होने के कारण हम सभी लोग पंचायती राज को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल में मनाते हैं। पंचायती राज जो व्यवस्था है, जैसे पंचायती राज, उससे ही आप समझ जाएंगे कि पंचायतों का राज मतलब हमारी सत्ता का विकेंद्रीकरण। पहले सत्ता शासन के पास हुआ करती थी, सरकार के पास हुआ करती थी, अब वो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में उसको बांट कर लोगों में लागू किया गया। 24 अप्रैल 2010 में हमने सबसे पहले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को घोषित किया गया और इसको हमने मनाना स्टार्ट किया गया। पंचायती राज व्यवस्था है क्या? पंचायती राज जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने की एक व्यवस्था है। ये अंग्रेजों के शासनकाल से चली आ रही है। जब हम अंग्रेजों के शासनकाल की बात करें तो उस टाइम भी ये पंचायत राज व्यवस्था थी और उसको उन्होंने मतलब उस दृष्टि से नहीं रखा था कि पंचायतें सुदृढ़ हों। 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत देश के सभी प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था लागू की गई, तो इसकी शुरुआत हम लोग माने कि पंचायत राज की शुरुआत थी। 1957 में योजना आयोग का गठन हुआ, साथ ही सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। पंचायत राज व्यवस्था 1993 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। मतलब हम एक ऐसे कानून के अंतर्गत पंचायत राज व्यवस्था को लागू किए गए जिससे हमारे को एक संवैधानिक पंचायती राज का दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायती राज की विशेषताएं जो है, त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था, वित्त आयोग का गठन, 5 साल में चुनावों का होना, सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करना और योजनाओं को विधिवत रूप से चलाने के लिए मॉनिटरिंग, निरीक्षण, पर्यवेक्षण का नियम लागू करना। पंचायत राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिससे आम जन को अपनी बात कहने के लिए एक ग्राम सभा को संवैधानिक संस्था के रूप पर रखा गया।
सर जी, हाँ, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पंचायती राज में ग्राम सभा को अधिक महत्व क्यों दिया गया?
देखिए, इसके लिए अपन को जब हम लोगों का मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 बना तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि ग्राम सभा जो है वो एक संवैधानिक संस्था है, धारा 6। संवैधानिक संस्था मतलब ग्राम सभा का प्रस्ताव लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मान्य होता है और ग्राम पंचायत जो है वो एक आय वाली संस्था है। वो एक ऐसी संस्था है जो आम जनता को मूलभूत सुविधाओं देने का काम करती है, निगमित निकाय। तो ग्राम सभा के माध्यम से आम जनता को जोड़कर और पूरी योजनाओं को बनाने का सशक्त जो कार्य है वो पंचायती राज व्यवस्था ने किया है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से विकास करना, केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा लोगों को बनाई जाने वाली योजनाओं को ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्तावित करके लागू करना, सामाजिक न्याय प्रणाली को मजबूत करना और साथ ही वित्त व्यवस्था को संगठित रखना, सुसज्जित रखना, सुव्यवस्थित रखना। जैसे आपने देखा होगा हर 5 साल में वित्त आयोग अपने एक वो वित्त आयोग वो गठन करता है। अभी हमारा 2025 तक 15वां वित्त चल रहा है, 15वां के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 17 आएगा, 17 के बाद 18 आएगा। मतलब उन्होंने कहा कि आप गांव के विकास के लिए मतलब वित्त की राशि की कोई कमी ना हो।
सर जी, सर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस पंचायती राज व्यवस्था के तहत मास्टर रिसोर्स पर्सन एमआरपीओ की पंचायती राज में क्या भूमिका है।
देखिए, यदि पंचायत राज नहीं होता तो एनआईआरडी नेशनल इंस्टीट्यूट जो हमारा हैदराबाद है वो मास्टर रिसोर्स पर्सन का कॉन्सेप्ट लाता नहीं, और गांव के जो नवयुवक हैं, युवक युवतियां हैं, युवा लोग हैं, उन लोगों को मास्टर रिसोर्स पर्सन बनाता नहीं। आज हमारी एक ऐसी कड़ी है मास्टर रिसोर्स पर्सन जो पंचायत राज व्यवस्था को व्यवस्थित और सुसंगठित करने पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जैसे आप देखें अभी हाल ही में हमारी संस्थाओं ने जीबीडीपी ट्रेनिंग किया हुआ है, सरपंचों की ट्रेनिंग किया हुआ है, आने वाले समय में और ट्रेनिंग होना है। पैसा एक्ट को विधिवत पैसा एक्ट वाली ग्राम पंचायतों में कैसे लागू किया जाए उसका प्रचार प्रसार किया है। इसमें आपकी मोबाइल वाणी जो दिनकर जी आपकी है मोबाइल वाणी है ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चाहे वो संविधान दिवस हो चाहे पंचायती राज दिवस हो, इनमें आप मोबाइल वाणी के माध्यम से बहुत से लोगों को एक अच्छा संदेश दे देते हैं। मास्टर रिसोर्स पर्सन एक प्रशिक्षण के अलावा गांव में सेतु का काम करता है, गांव और जनपद को जोड़ने का, लोगों को जोड़ने का।
सर जी,
हाँ,
हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि अधिकतर देखने में आ रहा है कि कई ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं सफल नहीं हो पाती, ऐसे परिस्थितियों में पंचायती राज व्यवस्था के तहत मतदाताओं की क्या भूमिका होनी चाहिए।
दिनकर जी, इसमें निश्चित है कि ग्राम सभा जैसे होना चाहिए वैसे सशक्त नहीं हो रही। इसका मेरे हिसाब से मेरा जो अनुभव कहता है दो रूप हैं। एक तो लोगों के बीच में प्रचार प्रसार का नहीं होना ग्राम सभा का, दूसरी बात जो हमारी जो पंचायती का जो ढांचा है मतलब शासकीय ढांचा वो भी इसमें अवेयरनेस के मामले में थोड़ा पीछे है कि हम ग्राम सभा को कैसे सशक्त करें। जब तक हम लोग आम लोगों को नहीं बताएंगे कि हमारा कोई भी काम बिना ग्राम सभा के नहीं होगा तब तक ग्राम सभा सशक्त नहीं हो पाएगी। ग्राम सभा में आना, ग्राम सभा में अपने काम कराना, अपनी बातों को रखना, योजनाएं बनाना, गांव के विकास में अपनी जन भागीदारी करना। एक मास्टर रिसोर्स पर्सन अपने गांव का मतदाता भी है, मतदाता है मतलब वो ग्राम सभा का सदस्य भी है, तो उसकी भूमिका बहुत सशक्त हो जाती है कि वो ऐसे टूल्स अपनाए कि ताकि आम आदमी ग्राम सभा से जुड़ सके। शासन को भी सभी प्रशिक्षण तो करा रही है लेकिन ग्राम सभा के लिए विशेष प्रशिक्षण और विशेष आयोजन के लिए एमआरपी के साथ एक अच्छी रणनीति बनाकर ग्राम सभा को सशक्त करना चाहिए।
सर जी, आपसे एक अंतिम प्रश्न। आज पंचायती राज दिवस के अवसर पर आप क्षेत्रवासियों को और लोगों को मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे।
देखिए, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि जो शासन की जो मूलभूत योजनाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाओं के लिए चल रही हैं, उसमें अपनी भूमिका को ऐसे ऐसे मतदाता के रूप में, मतदाता ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कार्य करके करना चाहिए। यदि जहां ग्राम सभा हो रही है तो ये उसका ये मतलब नहीं कि मैं ग्राम सभा में क्यों जाऊं क्योंकि मुझको कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन उसका ग्राम सभा में जाना इसलिए जरूरी है कि उस ग्राम सभा में होने वाले ग्राम विकास के जितने प्रस्ताव हैं वो सामाजिक हैं, समाज के लिए हैं, उसके लिए हैं, सबके लिए हैं। तो आम जनता की जो सोच है वो अपने से परे हट के सबके लिए होना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका कि आपने मोबाइल वाणी के माध्यम से आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर रूबरू होकर महत्वपूर्ण बातें साझा की। मोबाइल वाणी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है।
थैंक यू पातुरकर जी, आपने मुझे आमंत्रित किया, समय दिया, थैंक्स,
धन्यवाद सर।